आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। अमंगल, गांव के मंगल का आप कोई उम्मीद नहीं। हरगौरी तहसीलदार दुर्गा के वाहन की तरह गुर्राता है। साले सब चुपचाप दफा 40 का दरखास्त देकर समझते थे कि जमीन नकदी हो गई। अब समझो, बौना और बलदेवा से जमीन लो। सब सालों से जमीन छुड़ा लेने के लिए कहा है मैनेजर साहब ने। लो जमीन, राम नाम की लूट है। अरे कांग्रेसी राज है तो क्या जमींदारों को घोल कर पी जाएगा। सुमृतदास बेतार की जीप थकती नहीं, सुबह से ही बकबक करता जा रहा है। तमता टोली में, पासवान टोली में और कोयरी टोले में घूम घूम कर वो लोगों को सुन रहा है। मैनेजर साहब ने परवाना में क्या लिखा है मालूम? नया तहसीलदार तो एकदम घबरा गया था। मैंने कितना समझाया, तहसीलदार आप एकदम चुपचाप रहिए, जिन लोगों को दरखास्त देना है देने दीजिए। जिस दिन मुकदमे की तारीख होगी उससे एक दिन पहले हम आपको नोक्स बता देंगे। वही हुआ, जमींदार वकील तो सुनकर उछलने लगा। चाहे जो भी कहो, तहसीलदार बिश्नाथ प्रसाद ने कभी कोई नोक्स हमसे छिपा कर नहीं रखा। मैनेजर साहब ने क्या लिखा मालूम? सुमृतदास को एक बार सर्कल कचहरी में भेज दो, सुसलिंग मुसलिंग क्या करेगा। सुमृतदास, बुढ़ापे में यदि इज्जत बचानी है तो जरा हो सवा दुरुस्त रखकर बोला करो, समझे। कालीचरण की आंखें लाल हैं। सुबह से ही वो सुमृतदास को खोज रहा है। सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ बूढ़ा कल से ही अटर पटर और उपगंडा कर रहा है, समझे। हाँ, पीछे ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के लौंडों को बड़े छोटे का विचार नहीं। हम क्या बोले हैं, पूछो, लोगों से पूछो। बोलो जी गुलचरण, सुसलिंग पार्टी मत कहिए, सोशलिस्ट कहिए। बात तो सही मुंह से निकलती ही नहीं और मुंसियाती बघारते हैं। जमींदार के तहसीलदार से और अपने मैनेजर से भी जाकर कह दो, रायतों से जमीन छुड़ाना हंसी ठट्ठा नहीं। पार्टी की एकजुटी में परसताप पास हो गया है, संघर्ष होगा संघर्ष, समझे। कालीचरण गर्दन हटता हुआ चला गया। करैत सांप को गुस्से में हटता देखा है ना, ठीक उसी तरह सुमृतदास को कंपकपी लग जाती है। आसपास बैठे हुए लोगों के भी दुखदुखी तेज हो जाती है। अभी तो ऐसा लगता था कि जुलम हो जाएगा, अलबत देह बनाया है कालिया कालीचरण ने, देखकर डर लगता है। सोशलिस्ट पार्टी में जाकर तो और भी तेजी से जल जल कर रहा है, संघर्ष क्या होगा। डा डिग्गा। संथाल टोली में दो दिनों से दिन रात मादल बजता रहता है, डा डिग्गा। औरतें गाती हैं, नाचती हैं झुमर झुमर। दरखास्त नामंजूर हो गई, जमींदार जमीन छीन लेगा। कोठी के जंगल में जामुन और गुलर में बहुत फल लगे हैं इस बार। जंगली सुअर के बच्चे भी किल बिल कर रहे हैं, हल के फाल को तोड़कर तीर बनाओ, लोहा महंगा है। रे हाय। डा डिग्गा। कालीचरण ने कहा है संघर्ष करेंगे, संघर्ष क्या परसताप क्या। रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा। खेत में पाट के लाल पौधों को देखकर जी ललच रहा है। धान की हरी हरी सुई खेत में निकल आई है, माटी का मुंह नहीं टूटता। संथालों का एक प्रसिद्ध पर्व बधना पर्व की रात में तूने जो जुड़े में फूल लगाया था उसे नहीं भूला हूं। धरती का मुंह भी नहीं टूट रहा प्यारी। हमारे दादा परदादा पुरैनिया के जेल में मर खप गए, मकई के बाल की तरह उनके बाल भूरे हो गए होंगे। हमारे बच्चों के दांत दुधिया मकई के दानों की तरह चमकेंगे। उनसे कहना धरती माता के प्यार के जंजीर में हम बंध गए हैं। रे हाय। रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा। यदि जमीन पर कोई आवे तो गर्दन काट लो। तहसीलदार हरगौरी सिंह ने रैयतों के साथ जमीन बंदोबस्ती का ऐलान कर दिया है। बस 100 रुपए बीघा सलामी देकर कोई भी रैयत जमीन की बंदोबस्ती के लिए दरखास्त दे सकता है। अरे तुम लोग बेवकूफ हो, ये जमीन 1 साल पहले ही नीलाम होकर खास हो गई है। पुराने तहसीलदार ने ही सारी कार्रवाई की थी। नीलाम होकर खास हुई जमीन पर दफा 40 की दरखास्त करने से नकदी कैसी होगी। हाँ, नए बंदोबस्त लेने वालों को जमा बांध देंगे, ये तो हमारे हाथ की बात है। इसके लिए कचहरी की दौड़ धूप करने की क्या जरूरत। अरे सुखानु दास, मुकदमा में कितना खर्च हुआ तुम लोगों का, जरा इन लोगों को बता दो। हाँ, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी वालों के खुराक भी जोड़ना। सुना, हर एक तारीख में चंदा वसूल कर पैरवीकार नेताजी लोगों को देना पड़ता था। 10 रुपए नकद, सिगरेट और पान की बात तो छोड़ ही दीजिए, यही पेशा है भाई इन लोगों का। हाँ, जिसकी जमीन नीलाम हो गई है वो यदि जमीन पर आवे तो उसकी गर्दन उड़ा दो, रात से मदद मिलेगी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। गाय बैल, बाछा बाछी और भैंस के पाड़ा की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। दूने सूद पर भी रुपया कर्ज लेकर जमीन मिल जाए तो फायदा ही है। पाट का भाव 15 रुपया है, ऊपर 50 भी जा सकता है, 100 भी हो सकता है। धान सोने के भाव बिक रहा है। जमीन, जिसके पास जमीन नहीं वो आदमी नहीं जानवर है। जानवर घास खाता है लेकिन आदमी तो घास खाकर नहीं रह सकता। अरे छोड़ो जी, कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी की बात को, दरखास्त नामंजूर हो गई, जमीन बंदोबस्ती। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। हर टोले के लोग आपस में ही लड़ेंगे क्या? कोयरी टोले के भजू महतो की जमीन उसी का भगिना स्वरूप महतो बंदोबस्ती ले रहा है। सोबरिन की जमीन पर उसका चाचा रामशेर नजर लगाए बैठा है। सोबरिन की जमीन सोना उगलती है। यादव टोली के सभी रहतों की नीलाम हुई जमीन खेलावन सिंह यादव ले रहे हैं। संथालों की जमीन राजपूत टोल के लोग ले रहे हैं। सुमृत दास कहते हैं ये बात गुपुत है, किसी से कहना मत कि संथालों की जमीन खुद तहसीलदार साहब ले रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो नहीं ले सकते, इसीलिए दूसरों के नाम से ले लिया है। गांव के मंगल की अब कोई उम्मीद नहीं। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी बालदेव और बावन दास को पंचायत बुलाने को कहते हैं। पंचायत तुम ही लोग बुलाओ, मेरे बुलाने से ठीक नहीं होगा। कालीचरण की पार्टी के सबसे बड़े लीडर पुरैनिया आ रहे हैं। कॉमरेड ने 5 दिनों में 300 रुपए वसूल लिए हैं। अकेले सोमा ने 250 रुपए दिए हैं। सबसे बड़े लीडर से कहना होगा, गांव में इस तरह फूट रहने से तो संघर्ष नहीं होगा, फिर एक बार सैनिक जी और चिंगारी जी को लाना होगा, बहुत दिनों से सभा नहीं हुई है। खेत में कोड़ कमान नहीं करने से जिस तरह जंगल झाड़ हो जाता है, उसी तरह इलाके में सभा मीटिंग नहीं करने से इलाका भी खराब हो जाता है। सेक्रेटरी साहब को भी इस बार लाना होगा, इस बार लॉर्ड पीसर भी लाना होगा। चरखा सेंटर के मास्टरनी जी और मास्टर जी लोगों में झगड़ा हो गया है। करघा मास्टर टुनटुन जी को मंगला देवी का सोशलिस्ट ऑफिस में रहना बड़ा बुरा लगता है। जब तक बीमार थी वहां थी तो थी, अब अच्छी हो गई तो वहां रहने की क्या आवश्यकता। और मंगला देवी को पटना से ही जानते हैं टुनटुन जी। गांव तरक्की सेंटर में जब ट्रेनिंग लेती थी तभी से उड़ती थी। व्यवस्थापिका जी इनके मिलने वालों से परेशान रहती थी, रोज नए नए लोग। बहुत बार मंगला देवी को चेतावनी भी दी गई लेकिन इनके मिलने वालों में कॉलेज के विद्यार्थी, MLA, साहित्य गोष्ठी के मंत्री जी, चरखा संघ के कार्यकर्ता तथा कई हिंदी दैनिकों के सहायक संपादक भी थे। व्यवस्थापिका जी हार मानकर चुप हो गईं। मंगला देवी की स्वतंत्रता पर आघात करके एक दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों का कोप भाजन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए व्यवस्थापिका जी ने मंगला देवी को इस पिछड़े हुए गांव में भेजा था। लेकिन यहां भी मंगला देवी बात करने में मर्दों के भी कान काटती हैं, पजामा और कुर्ता पहनती हैं, बाहर निकलते समय खद्दर का दुपट्टा भी डाल लेती हैं। कद नाटा, रंग सांवला और शरीर गठा हुआ है। आंखें बड़ी अच्छी, खास तिरहुत की आंखें। करघा मास्टर को वो तांत मास्टर कहती हैं और चरखा मास्टर को धुनिया मास्टर। जुलाहा धुनिया मंगला देवी से क्या बात करेंगे, जब बीमार पड़ी तो झांकी मारकर भी देखने के लिए नहीं आते थे और आज नैतिकता पर प्रवचन दे रहे हैं। मंगला देवी इन लोगों को खूब पहचानती हैं। व्यवस्थापिका जी को लिखेंगे तो लिखें, क्या करेंगी व्यवस्थापिका जी, ऐसी धमकियों से मंगला देवी नहीं डरती। टुनटुन जी जो चाहते हैं सो वो जानती है। पटना से आते समय समस्तीपुर में उसे लेकर उतर गए, बोले गाड़ी बदलनी होगी। बाद में मालूम हुआ कि वही गाड़ी सीधे कटिहार जाती है, दूसरी गाड़ी फिर सुबह 8 बजे। रात को 12 बजे धर्मशाला में ले गए। टुनटुन जी का परिचय और कहना नहीं होगा। बालदेव जी को खिलावन सिंह यादव ने साफ जवाब दे दिया है, सकलदीप का गौना होने वाला है, नई दुल्हन ससुराल में बसने के लिए आ रही है, बाहरी आदमी का परिवार में रहना अच्छा नहीं। चंपापुर के आसिन बाबू की बेटी है, जरा भी इधर उधर होने से बाप को चिट्ठी लिख देगी, बड़े आदमी की बेटी है। बालदेव जी ने झोली झंडा खिलावन के यहां से हटा लिया है। बालदेव की मौसी गांव में घूम घूम कर शिकायत कर रही है, लेकिन बालदेव जी साधु आदमी है, मान अपमान से परे हैं, वे चुप हैं। लक्ष्मी उन्हें कंठी लेने के लिए जिद कर रही है। पुपड़ी मठ के महंत रामस्वरूप गुसाई आए हुए हैं। बालदेव जी कंठी ले लें तो मठ पर रहने में कोई असुविधा नहीं हो। बावनदास का मन बड़ा विश्वासी हो गया है। किसी पर विश्वास करने को जी नहीं करता। गांधी जी को छोड़कर अब किसी पर विश्वास नहीं होता। वो गांधी जी को एक खत लिखवाना चाहता है। गंगुली जी जरूर लिख देंगे, बराबर लिख देते हैं। उसके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।